दीदी, आज अंजलि दी के घर गई थी ना, क्या वहाँ कुछ हुआ है? अप्पू के सवाल से राधिका चौंक गई। उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा फैल गई और उसने हड़बड़ाते हुए सिर हिलाकर इनकार किया। नहीं तो, कुछ भी नहीं हुआ, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछने लगी? अर्पिता ने गौर से उसके चेहरे को देखा, जिसका रंग उड़ गया था। जब आप घर आईं तो बहुत गुस्से में लग रही थीं। अंजलि दी से फ़ोन पर लड़ भी रही थीं। पापा से मिले बिना आप सीधे अपने कमरे में चली आईं, और जब मैं यहाँ आई तब आप कुछ परेशान भी लग रही थीं, तो मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ हो वहाँ। अर्पिता की बातें सुनकर राधिका पल भर सकपका गई, फिर तुरंत संभलते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंजलि ने मेरे साथ कुछ मजाक किया था जो मुझे पसंद नहीं आया, बस उसी बात पर हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, और आज बहुत थक गई थी मैं। शायद इसलिए तुम्हें मुझे देखकर लगा हो कि मैं परेशान हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ठीक हूँ और पापा के पास जाने ही वाली थी। राधिका ने चालाकी से पूरी बात का रुख बदल दिया। हकीकत छुपाते हुए उसने मुस्कुराकर अर्पिता को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने की कोशिश की। अर्पिता कुछ पल गहरी निगाहों से उसके चेहरे को देखती रही, फिर सिर हिलाते हुए उसे जल्दी आने को कहकर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही राधिका ने गहरी सांस ली और उठकर अलमारी की ओर बढ़ गई। दूसरी तरफ राधिका की सही सलामत घर पहुंचने का पता चलने पर माधव भी घर लौट आया था। सारे रास्ते वो राधिका के बारे में ही सोच रहा था। अपने कमरे में बैठा वो अभी भी राधिका के बारे में सोच रहा था। राधिका का कहा झूठ उसके मन में कई सवालों को जन्म दे रहा था, जिनके जवाब पाने को उसका मन बेचैन था। अनुपमा जी ने उसके कमरे की लाइट जलती देखकर अंदर चली आईं। माधव, अनुपमा जी ने स्नेह भरा हाथ उसके सर पर फेरते हुए प्यार से उसे पुकारा। उनकी आवाज सुनकर माधव चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आया। मम्मी, आप कब आईं? अपनी माँ को देखकर वो हैरान था। अनुपमा जी ने उसके सवाल का जवाब दिया और गंभीर स्वर में बोली, जब आप अकेले बैठे कुछ सोचते हुए परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने पल भर ठहर कर चिंतित निगाहों से उसे देखा। माधव, क्या बात है बेटा, आजकल कुछ परेशान से लगते हैं आप, खुद में ही खोए रहते हैं। रेस्टोरेंट में कोई परेशानी है?
नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अपनी माँ को परेशान होते देखकर माधव ने अपनी चिंताओं को परे झटक दिया और फीका सा मुस्कुरा दिया। अनुपमा जी कुछ पल उसके चेहरे को देखते हुए उसके मन का हाल जानने की कोशिश करती रही, फिर प्यार से उसके गाल को छूते हुए बोली, माधव बेटा, हमारी एक बार मानेंगे?
कौन सी बात मम्मी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है। आप कहिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा।
बेटा, शादी कर लीजिए। सुमन को गए सालों बीत गए, वो आपको पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, पर आपकी जिंदगी आज भी उसी मोड़ पर ठहरी हुई है जब वो आपको छोड़कर गई थी। कब तक ऐसे तन्हा जिंदगी काटते रहेंगे आप? आसान नहीं होता अकेले जिंदगी गुजारना। अभी हम हैं, शिखा है और आप भी जवान हैं, तो आपको इसकी कुछ खास जरूरत महसूस नहीं होती होगी।
पर बेटा, शिखा कब तक आपके साथ रहेगी? उनकी शादी हो जाएगी तो वो भी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाएगी, जैसे आपकी बाकी दोनों बहनें हो गई हैं। हमारी उम्र हो गई है, आज है कल नहीं, आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, कोई नहीं होगा आपको और इस घर को संभालने वाला। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपको एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत महसूस होगी जो जिंदगी के सफर में आपकी साथी बन जाए। अब तक आपने अपने जीवन को हमारे और अपनी बहनों पर न्योछावर किया है, अब अपने बारे में सोचिए, अपना परिवार बसाइए। आपकी पत्नी आएगी तो हम इस परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकेंगे। बच्चे होंगे तो इस सूने आंगन में उनकी किलकारियां गूंजेंगी। आपकी औलाद को अपनी गोद में खिलाने की हमारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। हम जानते हैं कि जैसा आपका अनुभव रहा, आपके लिए दोबारा शादी के बारे में सोचना आसान नहीं है, पर बेटा, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती हमारी थी। हम आपके लिए सही जीवन साथी नहीं चुन सके, हमारे कारण आपको अपने शादीशुदा जीवन में उन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आज आप बिल्कुल अकेले रह गए हैं। आज तक आपने हमारी हर बात मानी है, ये बात भी मान लीजिए, दोबारा शादी के लिए हाँ कह दीजिए, ताकि हम आपकी और इस घर की जिम्मेदारियां आपकी पत्नी को सौंपकर आपके बच्चों को अपनी गोद में खिलाने के अरमान पूरे करने के बाद निश्चिंत होकर आपके पापा के पास जा सकें। अनुपमा जी ने अपनी ओर से उसे समझाने और दूसरी शादी के लिए राजी करने की पूरी कोशिश की थी, उनके प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं थी। माधव भावहीन चेहरे के साथ खामोशी से उनकी सारी बातें सुनता रहा, फिर उनकी हथेलियों को अपनी हथेलियों में थामते हुए संजीदगी से बोला, माफ करना मम्मी, पर आपकी ये इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। एक अच्छा बेटा और भाई बनने में मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका, मेरे कारण सुमन नाउमीद हुई, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची, मैं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। पहली शादी का मेरा जो अनुभव रहा वो मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया है, और अब मैं दूसरी शादी करने का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे समझ आ गया है कि मैं एक साथ अपनी पत्नी और माँ बहन को खुश नहीं रख सकता। आप लोगों की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं, और जो लड़की मेरे भरोसे इस घर में आएगी मैं उसे भी अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर से पहले जैसी स्थिति में फंस जाऊंगा मैं, जिससे सबको सिर्फ तकलीफ ही होगी, जो मैं नहीं चाहता। अभी जिंदगी सुकून से कट रही है और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा, और अगर मुझे कभी लगा कि मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ तो आपको जरूर बताऊंगा।
पर तब तक के लिए आप ये बात दोबारा मत कीजिएगा और परेशान भी मत होइएगा। माधव का जवाब सुनकर अनुपमा जी के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। बेटा, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, बाद में अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। मिल जाएगी मम्मी, अगर किस्मत में लिखी होगी तो जरूर मिल जाएगी, पर अगर मेरे नसीब में ही तन्हा जिंदगी गुजारना लिखा होगा तो आप या मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी जिंदगी में आगे जो होगा उसकी चिंता अपने भगवान पर छोड़ दीजिए। अनुपमा जी चाहकर भी उसे समझा न सकी, क्योंकि माधव दूसरी शादी के लिए तैयार ही नहीं था और अपनी दलीलों से उनकी हर बात को काट देता था। आखिर में वो निराश होकर वहां से चली गई। उनके जाते ही माधव के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए और निगाहें उस कमरे की दीवार पर लगी उस फोटो फ्रेम की ओर घूम गई थी जिसमें वो और सुमन एक साथ नजर आ रहे थे। क्रमशः